हरि ओम। पूज्य स्वामी जी के चरणों में वंदन। आदि गुरु शंकराचार्य कृत रचित शिव भक्ति स्तोत्र शिवानंद लहरी, ये विषय पर प्रवचन उस साल में शुरू हुआ था और शायद अगले साल पूरा होएगा। ये टाइम 48 नंबर के श्लोक से 75 तक का वो पेपर मिला है। हम महाराज जी से रिक्वेस्ट किए थे उस टाइम गीता चिंतन वाला भी रखने का था, लेकिन दोनों काम तो नहीं हो सकते। अगले साल स्वामी जी अपन गीता 7 दिन का गीता चिंतन वाला करे और 7 दिन का ये शिवानंद लहरी करे, तो 14 दिन बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हिसाब से रखेंगे। महाराज जी कभी कोई ना बोलते ही नहीं, सुबह भी स्वाध्याय कराते और प्रवचन भी कराते, और नेपाल से आते अपने निमंत्रण के आप उसके लिए सब सबकी तरफ से आश्रम ट्रस्ट की तरफ से समाज के चरणों में वंदन। और ये कार्यक्रम बरोबर 27 तारीख को पूर्णावती होगा, 5:30 से 7 रोज चलेगा। 28 तारीख को अपना जो दूसरा कार्यक्रम है इसके लिए 27 तारीख को शाम को, और एक दिन 22 तारीख को ये कार्यक्रम ग्राउंड फ्लोर में होगा, वो अगले दिन बता देंगे हम।
ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्यग्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुकं गौड़पदं महंतं गोविंद योगींद्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यमथास्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद् गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ओम शांति शांति शांति। शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हराय नमः। ओम हराय नमः। ओम हराय नमः। ओम नमो हराय। हराय हराय नमः। ओम नमो हराय। हराय नमः। ओम हराय नमः। ओम हराय नमः। ओम नमो हराय। हराय नमः। ओम हराय नम ओम नमो हराय बाबाय नम ओम बाबाय नम ओम बाबाय नम ओम नमो भवाय बाबाय नम ओम बाबाय नम ओम नमो भवाय बाबाय नम ओम बाबाय नम ओम बाबाय नम ओम नमो भवाय बाबाय नम ओम बाबाय नम ओम नमो भवाय मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम नमो मृडाय मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम नमो मृडाय मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम नमो मृडाय मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम नमो मृडाय शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम नमः शिवाय शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम नम शिवाय भज मन शिव शिव निरंतरम जप मन शिव शिव निरंतरम भज मन शिव शिव जप मन शिव शिव निरंतरम रट मन शिव शिव निरंतरम स्मर मन शिव शिव निरंतरम रट मन शिव शिव निरंतरम स्मर मन शिव शिव निरंतरम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओम 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 विगत दो वर्षों से प्रेमपुरी आश्रम आयोजित सायंकालिक संत प्रवचन माला का ये सिलसिला चल रहा है। इस क्रम में प्रवचन के लिए विषय वस्तु आदिगुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिवानंद लहरी को आधार बनाया था। 100 श्लोक का यह स्तोत्र है। पहले साल कुछ श्लोकों की व्याख्या हुई, दूसरे साल हुई, अर्थात पिछले साल दूसरे साल 47 श्लोक तक की व्याख्या हो चुकी थी। एक संकल्प बना है कि कोई भी ग्रंथ, चाहे वह भक्ति सिद्धांत का हो, चाहे ज्ञान मार्ग का हो, चाहे शिव भक्ति से संबंधित हो, चाहे कृष्ण भक्ति से संबंध हो, चाहे ब्रह्म ज्ञान से संबंध हो, सगुण साकार से संबंध हो, सगुण निराकार से संबंध हो, चाहे निर्गुण निराकार से संबंध हो, जिससे संबंधित जो ग्रंथ है उसको शुरू करते हैं तो पूरा करें, पूरी ग्रंथ की व्याख्या हो जाए, ऐसा संकल्प के चलते ये निरंतर शिवानंद लहरी को हम चला रहे हैं। प्रेमपुरी आश्रम के साथ अपना ऐसा संबंध हो गया बहुत पुराना कि जो पुराने संत थे वे लोग भी अपने प्रारब्ध के अनुसार अपना काम पूरा करके मुक्त हो चुके। अब पुराने में से बचे कुचे अब हम हैं। मुझे लगता है प्रेमपुरी आश्रम में विगत 25 साल से हम आ रहे हैं लगातार। कई बार हमने प्रस्ताव रखा कि हम बहुत दूर रहने लग गए आजकल, पहले बंबई में ही रहते थे 12 महीने, अब आजकल चले गए नेपाल, वहां काम कर रहे हैं, सेवा का काम, वेदांत प्रचार का काम, और वहां से आने दूर पड़ता है और आना संभव नहीं है, तो अब कोई दूसरा विकल्प खोजा जाए। तो प्रेमपुरी आश्रम का यह आग्रह है कि जब तक आप जिंदे रहेंगे तो 1 महीना जो प्रवचन का कार्यक्रम है वो आपका रहेगा, आप छोड़ना नहीं। और अंदर से कहीं ना कहीं हमको भी लगता है कि इतना पुराना संबंध है, सारे श्रोता लोग, भक्त लोग सुनना चाहते हैं, आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, तो फिर कैसे छोड़ें, मन में ये भी लगता है। तो इसीलिए प्रेमपुरी आश्रम में आना जाना, साल में एक बार नेपाल से आते हैं, और प्रेमपुरी आश्रम उसका पूरा फायदा उठाना चाहता है। तो सुबह प्रवचन, नित्य जो प्रवचन है वो तो करते ही हैं, उसके साथ साथ स्वाध्याय का भी, हमने एक दो बार कहा कि स्वाध्याय तो किसी और को रख दो, बोले नहीं नहीं आप हैं तो आप ही करो, तो ठीक है भाई। उसके बाद भी अब चिमन भाई को हम शाम को जो बैठते हैं वो उनको सही है नहीं है। तो खाली क्यों बैठते हो, तो रख दिया संत प्रवचन माला, अभी अभी सुना उन्होंने, तुम लोगों ने सुना, आप लोगों ने सुना ना, तो ये तो खाली संत प्रवचन माला 10 दिन का हो गया, बोले नहीं हो दूसरा 7 दिन का गीता चिंतन माला भी शुरू करें। ये 15 दिन तो बेकार चला गया ना शाम का, देख लो बैठे बैठे, तो उसका भी उपयोग कर लो। तो हमने कहा हरि इच्छा जब तक सामर्थ्यता है तब तक करते रहो भाई। गाय जब तक दूध देती है घास खिलाते रहो और दूहते रहो भाई है ना। गाय जब तक दूध देवे तब तक घास खिलाते रहो। किसने कहा? नहीं नहीं ठीक है, एक घंटा और डेढ़ घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आधा घंटा तो गए ऐसे ही। तो अस्तु ये हो गया भूमिका। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य पर कुछ व्यक्ति कुछ चिंतक एक बहुत बड़ा आक्षेप करते हैं कि शंकराचार्य शुष्क वेदांती हैं, अद्वैत वेदांती हैं, शुष्क वेदांती हैं, उनके चिंतन में उनके विचार में रस नहीं है, ऐसा आक्षेप करते हैं। लेकिन शंकराचार्य जैसे बहुआयामी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति मिलना मुश्किल है। वो उनके ज्ञान मार्ग में अद्वैत वेदांत ज्ञान मार्ग में जितना गति है उतना ही भक्ति मार्ग में भी है। इसलिए शंकराचार्य जी को शुष्क वेदांती कहकर आक्षेप नहीं किया जा सकता, बड़ा दोष लगता है। अन्य जितने भी भक्ति सिद्धांत के आचार्य हुए हैं उन्होंने ज्ञान मार्ग को छोया नहीं, खाली भक्ति मार्ग को ही प्रतिपादन किया। लेकिन शंकराचार्य जी ऐसे आचार्य हुए हैं हमारे भारत में जिन्होंने ज्ञान मार्ग का पूर्णतया प्रतिपादन करने के साथ साथ भक्ति मार्ग का भी उसी तरह प्रतिपादन किया है। इतने समन्वयवादी हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी, इतिहास में मिलना मुश्किल है। दुराग्रह रहित हैं, पूर्वाग्रह रहित हैं। चाहे कृष्ण भक्ति संबंधित षटपदी देख लो, आज वैष्णवों के लिए आदर्श ग्रंथ हो गया है षटपदी, आदिगुरु शंकराचार्य जी की रचना है। हर वैष्णव षटपदी को गाए बिना वह भोजन नहीं करता है, उनके कृष्ण भक्ति की कृष्ण आराधना पूर्ण नहीं होती है। आदिगुरु शंकराचार्य जी की रचना षटपदी को गाए बिना भगवान के सामने बैठकर उनका भक्ति मार्ग पूर्ण नहीं होता है। इसी तरह भगवान शिव के भक्ति के बारे में ये जो शिवानंद लहरी नामक ग्रंथ है इतना सुंदर है, सारी शिव भक्ति को उन्होंने यहां रख दिया है और बड़े भाव से इस स्तोत्र की रचना की है। और इसी तरह फिर एक सौंदर्य लहरी नामक सौ ग्रंथ श्लोक का एक ग्रंथ है, वह शुद्ध शक्ति यानी देवी की स्तोत्र, देवी की आराधना, देवी भक्ति। तो ऐसा नहीं कि वो भक्ति भी खाली शिव के करते हैं और कि नहीं, ऐसा नहीं है। शक्ति की भी वह इतने उपासक थे, इसीलिए श्री विद्या का आविष्कार ही उन्होंने किया। और शिवानंद लहरी नामक सौ श्लोक का ग्रंथ की रचना की और उसी शिवानंद लहरी के नाम से आदिगुरु शंकराचार्य जी ने श्री विद्या की आराधना की, देवी का आराधना की। और ये शिवानंद लहरी में भी जो हम अभी व्याख्या करने जा रहे हैं भगवान शिव के भक्ति से संबंध में शक्ति का बहुत ही वर्णन किया है। तो हमारे एक परंपरा है कि हम जिस ग्रंथ की या जिस स्तोत्रों की व्याख्या करते हैं प्रारंभ में 5 श्लोकों का उच्चारण कराते हैं, अभ्यास कराते हैं, ताकि आप लोगों को भी श्लोक पढ़ने का अभ्यास बने और हमारे इस माध्यम से आप लोग भी इन श्लोकों का उच्चारण करें। और इसके लिए प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट ने सबको सुविधा उपलब्ध करा दी है, स्तोत्र फोटोकॉपी के रूप में सभी के हाथ में उपलब्ध करा दिया है। तो आप मेरे साथ, मैं गाऊंगा, उसके बाद आप भी गाना, 5 श्लोकों का अभ्यास करें। श्लोक नंबर 48, 47 श्लोक तक की व्याख्या पिछले साल हो गई है। अब यदि आप कहोगे कि महाराज पहले के श्लोक, तो इससे पहले के श्लोक को तो अर्थ हमने समझा नहीं, सुना नहीं, तो आपको प्रेमपुरी आश्रम ने वो व्यवस्था मिला दी है, रखा है, इंटरनेट में है, वहां से सुन सकते हैं, या फिर ऑफिस में से कैसेट लेकर इससे पहले की जो व्याख्याएं हुई है 2 वर्ष, 1 श्लोक से लेकर 47 श्लोक तक की व्याख्या हो चुकी है, उसको आप पेन ड्राइव में रखकर भी सुन सकते हैं, कैसेट में भी लेकर सुन सकते हैं। आजकल विज्ञान ने बहुत ही सुविधा उपलब्ध करा दिया है। एक छोटे से पेन ड्राइव में लिया, जर्नी करते गए, यात्रा चलते चलते ही सुनते रहो, रोटी पकाते पकाते कर सुनते रहो, भोजन बनाते बनाते है? तो उसका भी उपयोग कर लो और इसके पहले का सब सुन लो। और आगे का जो प्रसंग है वो शुरू करते हैं आज से। पहले इनका उच्चारण करें, पहले मैं बोलूंगा, फिर उसके बाद आप बोलना। नित्यानंद रसालयम सुरमुनि स्वांताम्बुजाताश्रयम् स्वच्छं सद्विजसेवितं कलुसरित् सद्वासना विस्कृतं संबोध्यान सरोवरं ब्रजमनो हंसावतंसं स्थिरम् किं क्षुद्राश्रय पल्वल भ्रमणसम् जाताश्रमं प्राप्स्यसि आनन्दामृतपूरिता हरपदाम् भोजालवालोद्यता स्थैर्योपग्नमुपेत्य भक्तिलतिका शाखोपशाखान्विता उच्चैर्मानसकायमानपटली माक्रम्य निष्कल्मषा नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे सत्कर्म संवर्धिता संध्यारभ्य विजृंभितं श्रुतिशिरा स्थानांतराधिष्ठितं सम सप्रेम भ्रमरा विराम मसकृत सद्वासना शोभितम् भोगिन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्कृतं सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुन महा लिंगं शिवालिंगितम् ब्रिंगिच्छा नटनोत्कट करिमद ग्राही स्फुरन् माधवा लादो नादयुतो महासित वपुः पञ्चेषुणा चाद्रितः सत्पक्ष सुमनो बनेषु स पुनः साक्षान्मदीये मनो राजीवे भ्रमराधिपो विहरताम् श्रीशैलवासी प्रभो कारुण्यामृतवर्षिणं घनविपत् ग्रीष्मच्छिदाकर्मठं विद्यासस्य फलोदयाय सुमनः संसेव्यमिच्छाकृतिम् नित्यभक्तमयूरमद्रिनिलयम् चञ्चज्जटामण्डलम् शंभो वांछति नीलकंदर सदा त्वं मे मनश्चातकः आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इन श्लोक में भगवान शिव की स्तुति करते हुए अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। कहा किसी को है, सुना किसी को रहे, उसको अन्योक्ति कहते हैं। वर्णन किसी और का कर रहे हैं और वर्णन हो रहा है किसी और का, इसको अन्योक्ति अलंकार बोलते हैं। काव्य में छंद अलंकार आदि का प्रयोग होता है। भगवान शंकराचार्य जी यहां अपने मन को एक पक्षी के रूप में उपमित कर रहे हैं। मन को हंस रूपी पक्षी के रूप में प्रतिपादन कर रहे हैं, यानी शंकराचार्य जी एक हंस को, हंस पक्षी जाति का है, उसको कह रहे हैं। और पक्षक के नाम से माने हंसक को संबोधन करके सुना रहे हैं मन को, अपने मन को है? देखो, ज्ञानी पुरुष जब साधारण भक्तों के सामने कोई बात कहता है तो अपने आप को ज्ञान की भूमिका में रहकर नहीं करता। वो साधारण व्यक्ति की भूमिका में ही रहकर उसकी बात करता है। जिस जो भूमिका में है उससे बात करनी हो तो आपने आपको भी उसी भूमिका में पहुंचाना पड़ेगा, तभी हमारी बात को वो समझेगा। सुनने वाला व्यक्ति साधारण भूमिका का है और हम बहुत उच्च भूमिका की बात करने लग जाएंगे, सुनने वाला सुन ही नहीं पाएगा, समझ भी नहीं पाएगा। और वो सुन सके समझ सके इसके लिए उसी की प्लेटफॉर्म में, उसी की भूमिका में पहुंचकर उसकी बात कहनी पड़ेगी। आदिगुरु हालांकि अपने आप समर्थ हैं, बहुत उच्च भूमिका के हैं, भक्ति के सिद्धांत में भी बहुत ऊंची भूमिका के हैं और ज्ञान के सिद्धांत में भी बहुत ऊंची भूमिका के हैं। वो उनकी भूमिका में आप और हम न ज्ञान की भूमिका में पहुंच सकते हैं न भक्ति की भूमिका में। हम तो बहुत नीचे स्तर के व्यक्ति हैं, लेकिन हमसे जब बात करने लगते हैं तो हमको जो कुछ कहने लगते हैं तो वो भी हमारी भूमिका में आकर कह देते हैं। यानी हमारी मन की जो अवस्था है, मानो कि शंकराचार्य जी के मन की भी वही अवस्था है। तो हमें लगता है कि शंकराचार्य हमारी बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी भूमिका में बात करते हैं तो हमें लगता है कि शंकराचार्य जी हमारी बात कर रहे हैं। या साधारण व्यक्ति यह समझता है कि शंकराचार्य जी भी हमारी अवस्था से ग्रसित हैं। हमसे लोग कहते महाराज शंकराचार्य जी ऐसी बात करते हैं, तो वो तो साधारण सी बात है, वो तो हम लोगों की जैसी बात कर रहे हैं। वो तो उनकी भूमिका तो हमारी भूमिका है, तो ये नहीं समझते हैं कि हमको समझाने के लिए उस भूमिका में आए, ये नहीं समझते। नदी में डूबते हुए व्यक्ति को बचाना हो, वो नदी में कूदे बिना बचा नहीं पाएगा। कोई भी तैराक हो, नदी में डूबा हुआ कोई व्यक्ति देखा, वो किनारे में बैठकर इधर आ जा इधर आ जा इधर आ जा कहने से वो आने वाला नहीं है, आएगा? उसको नदी में ही कूदना पड़ेगा, उस डूबते हुए के साथ एक होना पड़ेगा, उसके हाथ पकड़नी पड़ेगी, उसके टांग पकड़नी, उसको अंगाल आलिंगन करना पड़ेगा और उसको पकड़ना पड़ेगा और उसके साथ तादात्म्यता किए बिना उसको किनारे में लाना संभव ही नहीं है। सामान्य व्यक्ति कहेगा कि वो तो डूब रहा है, ये किनारे में बैठा हुआ क्यों कूद पड़ा उसमें, इसको क्या पड़ी थी कूदने की, उसको बचाना है इसलिए कूदेगा। बच्चे को खाना खिलाना हो तो मां अपने आप को खाने का अभिनय करती है, बेटा तुम खाओ, ए तुम्हारी मां भी खा रही है, खाली हाथ मुख में ले जाएगी, वो शायद एक आधा टुकड़ा खा भी लेगी, और नहीं भी खाए तो भी खाने का अभिनय करेगी, ये देख तेरी मां भी खा रही है, चलो तुम भी खाओ, दोनों मां बेटे खाएंगे, तुम भी खाओ हम भी खाते हैं। और बच्चा खा रहा है और मां बिना खाए मुख चलाकर चबाती है, क्या चबा रही है, चबाने का भी नहीं करती है, और उसको देखकर मां खा रही है तो मैं भी खाता हूं, बेचारा वो खाता है, एकादशी के दिन बच्चों को खिलाना हो तो मां खाएगी कि नहीं, लेकिन खाने का अभिनय करेगी कि नहीं है? खाने का अभिनय करते मुख में खाली हाथ ले जाकर मुख चलाकर खाने का अभिनय करने से क्या उसका व्रत टूटेगा? बोलो। लेकिन बच्चा क्या समझ रहा है कि वो खा रही है, वो खा रही है तो मैं भी खाता हूं, बच्चा खा लेगा। इसलिए शंकराचार्य जी कभी कभी हमारी भूमिका में आकर बात करते हैं। नित्यानंद रसालयम सुरमुनि स्वांताम्बुजाताश्रयम् स्वच्छम सद्विजसेवितम् कलुसरित सद्वासना विस्कृतम् संबोध्यान सरोवरम् ब्रजमनो हंसावतंसं स्थिरम् किं क्षुद्राश्रय पल्वल भ्रमण सन् जाताश्रमं प्राप्स्यसि। मन को मनो हंसावतंसम, हंसों में सर्वश्रेष्ठ हंस राजहंस। कहीं कहीं मन को चातक पक्षी के रूप में भी वर्णन किया है, महाराजा भर्तृहरि ने मन को चातक पक्षी के रूप में वर्णन किया। सुनाया चातक पक्षी को, कह रहे हैं चातक पक्षी को संबोधन करके, और सुना रहे हैं अपने मन को। महाराजा भर्तृहरि का यह श्लोक, भर्तृहरि का यह श्लोक। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रूयता अंबोदाहि बहवाहि संति गगने सर्वेपि नैतादृशम् केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति धरणिम् गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वच। चातक पक्षी कहते हैं कि चातक पक्षी जमीन का पानी नहीं पीता है। चातक पक्षी का नियम है मर जाएगा लेकिन जमीन के पानी नहीं पीता। उसके पीछे एक इतिहास है। कहते हैं किसी ने उस पक्षी को मारा तो आकाश में उड़ते हुए वह पक्षी को जब किसी ने बाण मारी तो घायल होकर वह गिर गया किसी सरोवर में। उसके शरीर से निकलते हुए लोही रगत ब्लड रक्त जो है सरोवर के पानी में घुल गया तो सारा पानी लाल हो गया। उसको प्यास लग रही है पानी पीने के लिए, वो प्राण निकलने की तैयारी है, छटपटा रहा है, पानी पीना चाहता है, लेकिन देखता क्या है, सारा पानी रक्त से भरा हुआ है। तो ये क्या पिएंगे? इसलिए उसने उस पानी को नहीं पिया, परिणाम हो गया वो मर गया। शायद वो संस्कार उसके हृदय में बैठ गया, जन्मांतर में भी आज तक चातक धरती के पानी को अपनी लोही ही देखता है, अपना रक्त ही समझता है। उसके आंख में वो धरती का पानी हमेशा लाल दिखता है। बोलो, किसी एक चातक को हुआ था, सारे चातक धरती को ही धरती का पानी रक्त के रूप में दिखने लग गया, इसलिए वो पीता नहीं। ये कहावत है चातक पक्षी के बारे में। आकाश से बादलों से वृष्टि होती हुई जो पानी का बूंद है वो मुख को खड़ा करता है और उसके मुख में जो बूंद गिर गया वही उसके जीवन का आधार बनता है। साल भर उसी पानी से उसने जीना है। तो चौमासे में तो खूब उसको पानी पीने को मिलेगा, पीता रहेगा रोज ही, लेकिन चौमासा जाने के बाद वह तो संथाना कर लेता है ना? क्या कर लेता है? संधानों कर लेता है वो तो, निर्जला एकादशी। वो चातक की जीवन भर निर्जला एकादशी हो जाती है, संतानों हो जाता है। और जबकि पानी पीने की इच्छा है तो उसका नियम है कि वृष्टि के द्वारा जो पानी बादल से गिरते हैं उसी को ही पीना है। धरती के पानी तो रक्त मानता है, वो पीता नहीं है। इसलिए जब आकाश में चौमासा शुरू होने से पहले आकाश में जब बादलों के टुकड़े देखता है तो जोर जोर से कराता है, जोर जोर से आवाज लगाता है और बुलाता है, बादलों को बुलाता है और कहता है, याचना करता है, पानी दो मुझे, पानी दो मुझे, पानी दो। उस चातक पक्षी की इस अवस्था को महाराजा भर्तृहरि ने अपने मन के साथ जोड़ा। हमारा मन भी ऐसा ही है भाई, जहां जाओ कृष्ण मंदिर जाओ तो भगवान कृष्ण से ही मांगना शुरू कर देते हैं। कोई कहते हैं पोता नहीं है, एक पोता दे दो। कोई कहते हैं कि नहीं बेटा नहीं है, एक बेटा दे दो। और कृष्ण मंदिर से, कृष्ण से तो मांगा मांगा, अपनी सारी कामनाएं कृष्ण के सामने रख दी और मांगा, लेकिन उसको भरोसा नहीं है कि कृष्ण पूरा मेरी इच्छा पूरा करेंगे। मंगलवार को जब सिद्धि विनायक जाता है तो गणेश जी से भी वही मांगता है। क्या मांगता है? जो कृष्ण से मांगा था वही चीज मंगलवार को सिद्धि विनायक में जाकर मांगेगा कि भगवान एक बेटा दे दो, एक पोता दे दो, बेटी की शादी कर दो, बेटा की शादी कर दो, कुछ नहीं तो कम से कम बंबई में एक घर दिला दो। मांगना वो छोड़ता नहीं है। कृष्ण सोचते हैं चलो उसने उससे मांगा वो दे देगा, मैं क्यों दूं? तो गणेश जी से मांगा तो गणेश जी देने की तैयारी कर रहे थे, इसको देना चाहिए, बेचारा मांग रहा है। तब तक फिर बाबुलनाथ गया और शिव जी से कहने लगा, भगवान मुझे बेटा दे दो, बेटी दे दो, पोता दे दो, पोती दे दो, धन दे दो, मकान दे दो, यूं दे दो, त्यूं दे दो। गणेश जी समझते हैं कि वो बाप से मांग रहा है तो हम क्या दें, चलो वही देंगे। देने की तैयारी कर रहे थे गणेश जी बेचारे, तो वहां जाकर मांगा तो वो देंगे, हम क्यों देंगे, चलिए। और जितने से तुम मांग रहे हो वो सब के सब तुम्हें देने लग जाए तो तुम संभाल भी नहीं पाओगे। वो संभाल पाओगे? पहले कृष्ण से बेटा मांगा, फिर गणेश से मांगा, फिर सिद्धि विनायक से गणेश से मांगा, फिर शिवजी से मांगा, फिर चलते चलते चले गए अंबाजी, तो अंबाजी से भी मांगा। ये सब के सब तुम्हें यदि देने लग जाएं, कितने बेटे होंगे तुम्हारे, संभाल पाओगे? कितनी बेटियां होंगे तुम्हारी, संभाल पाओगे? कितने बहुएं होंगे तुम्हारी, संभाल नहीं पाएंगे। हम ये विचार नहीं करते हैं कि हमने एक से मांग ली तो अब और से नहीं मांगना है। हमको ये भरोसा ही नहीं है कि वो हमने मांगा उससे वो दे ही देगा। देने में सक्षम है। यदि ये भरोसा होती तो कृष्ण के मांगने के बाद द्वारिकादी से मांगने के बाद सिद्ध विनायक से मांगते, बोलिए मांगना हमारे आदत पड़ गया है, हमारे मन की अवस्था यही है। जैसे चातक पक्षी आकाश में एक बादल का टुकड़ा देख लिया कि उसने मांगना शुरू कर दिया। महाराजा भर्तृहरि ने उस पक्षी को और अपने मन की अवस्था को तुलना की, दोनों की अवस्था एक ही है। तो पक्षी को सुनाया और समझाया अपने मन को, सुनाया पक्षी को, समझाया किसको, अपने मन को। रे रे चातक सावधान मनसा, ये चातक तो मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, मित्र तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा हितैषी हूं, दुश्मन नहीं हूं। क्षणम सूर्य सूर्यता, अरे भाई मेरी बात थोड़ी तो ध्यान से सुन लो, क्या कहने चाह रहे हो भैया। मान लो चातक ने सुन ली, क्या कहना चाहते हो। अंबो दाही बह बही संति गगने, ये बात ठीक है कि आकाश में पानी देने के लिए पानी को वहन करके उड़ने वाले बहुत से बादल के टुकड़े हैं, सभी अंबोदा है, है? सभी अंबोदा हैं बादल, लेकिन सर्वे भी नहीं था दृशा, आकाश में दिखने वाले सभी बादल एक समान नहीं होते। के चिद वृष्टि भीरार्द्रयंती धरणिम, उन बादलों में से कोई कोई बादल तो तुम्हारी याचना के अनुकूल वृष्टि भी ही अपने आप को सारा जीवन अपना अस्तित्व ही न्यूछावर करके सब कुछ वृष्टि कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, खाली कर देते हैं, अपना अपना अस्तित्व खाली कर देते हैं। आर्द्रयंती धरणी, सूखे से आक्रांत पृथ्वी को हरा भरा सस्यशालिनी कर देते हैं, अपना जीवन न्यूछावर करके धरती को हरा भरा बना देते हैं। लेकिन उन्हीं बादलों में से कुछ बादल ऐसे हैं, गर्जंती के चित वृथा, कोई कोई बादल तो आते हैं, गरजते हैं, बरसते नहीं, देखते देखते उड़ के कहां पहुंच जाते हैं, कहां पहुंच जाए, कहां गया, कहां गए, खो गए, गायब हो गया। इसीलिए यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो, जो बादल दिखा उसी के सामने मुझे पानी दो करके ये दीन याचना मत करो, जो पानी दे सके उसी के सामने पानी की याचना करो, उसी बादल के सामने पानी की याचना करो जो तुम्हें पानी दे सके और तुम्हारी तृषा को शांत कर सके। उन बादलों के सामने तुम अपनी वेदना मत पोखो, हमारी आदत पड़ गई है, हमारी जो है ना आदत उसी चातक की तरह है। हमें कोई समस्या पड़ती है तो जो भी दिखता है उसको हाथ पकड़ के अपनी समस्या में रोना, रो ही देते पट से। और कुछ लोग तो तुम्हारी समस्या से सहानुभूति रख सकते हैं, रखने वाले मिलेंगे, और कुछ तो तुमने घंटों लगाकर अपनी वेदना अपनी समस्या उसके सामने रखी और तुम्हारा उपहास करके हंस के चल पड़े। एक घंटे तक तुम अपनी वेदना को उनके सामने रखने का प्रयोजन क्या हुआ, बोलो है। इसीलिए जो तुम्हारे भावना से परिचित हो सके उस व्यक्ति के सामने ही अपनी समस्या अपनी वेदना पोखना, अपनी वेदना रखना है। जो तुम्हारी हृदय से एक न हो सके उनके सामने अपनी समस्या नहीं रखना भाई। महाराज भर्तृहरि ने चातक के माध्यम से मन को समझाया, हे मन जो भी तुम्हारे सामने आया उसी के सामने याचना नहीं करना भाई, नहीं भटकना इधर उधर, इसी तरह शंकराचार्य ने यहां मन को पहले तो बहुत बड़ा बना दिया। भर्तृहरि ने तो चातक पक्षी की उपमा दी, लेकिन शंकराचार्य ने मन को तो राजहंस की उपमा दी है। ये मन राजहंस, मनोहंस अवतंस, राजहंस हंसावतंस, तुम जो है इतत तत माधाव, तुम इधर उधर भटकना नहीं। कहां जाएं फिर? नित्यानंद रसालयम उसी के साथ ही कह दिया है, संबुध्यान सरोवरम ब्रज, इधर उधर मत भटको, तुम राजहंस हो, पहाड़ के चोटियों में तुम्हारा काम नहीं है, तुम राजहंस हो, जंगलों में तुम्हारा काम नहीं है, तुम राजहंस हो, बंबई में तुम्हारा काम नहीं है, तुम राजहंस हो तो सौराष्ट्र में तुम्हारा काम नहीं है, फिर दिल्ली में, बोले वहां पर भी नहीं है, फिर कहां है महाराज? संबुध्यान सरोवरम, बस भगवान शिव के ध्यान रूपी सरोवर में ही तुम्हारा काम है, राजहंस तो सरोवर में जाएगा। कौन सा सरोवर? मान सरोवर, संबुध्यान, इसीलिए मानस सरोवर की महिमा है। वो कैलाश पर्वत मान सरोवर से 40 किलोमीटर दूर है, कैलाश पर्वत मान सरोवर से 40 किलोमीटर दूर है, और मानस सरोवर जो है 16,000 फीट की हाइट में है, इतनी ऊंचाई में इतना बड़ा सरोवर, 80 किलोमीटर की जो है परिधि है, उसकी परिक्रमा कितनी है? 80 किलोमीटर की परिक्रमा है। उमा तो गई है मेरे साथ, नहीं बसंत भाई भी गए थे, नहीं हाँ ये आप भी गए थे, हमारे चिमन भाई तो पैदल ही गए थे इंडिया के बॉर्डर से, बहुत पहले मैं दिल्ली में कथा कर रहा था है? तो यहां से कैलाश मानसरोवर गए, नेपाल का रास्ता खुला नहीं था उस समय, सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से ही जाना पड़ता था, तो चिमन भाई गए, उनको पता था हम दिल्ली में कथा कर रहे हैं, तो सिलेक्ट हो गए, जब जाना तैयार हुआ तो हमारे पास आए, दर्शन किया, गए, जाके फिर वापस आए तो फिर हमसे मिले थे, तो हमें याद है। तो इतनी ऊंचाई में इतना बड़ा सरोवर है, वहां उस सरोवर में हमेशा कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब पड़ा रहता है। 40 किलोमीटर दूर जो कैलाश पर्वत है उसका प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन उस सरोवर में हमेशा पड़ा रहता है। इसीलिए कैलाश पर्वत माने मान सरोवर को क्या हुआ? संबुध्यान सरोवर। मानो जब आप ध्यान करने लगोगे भगवान का, तो जिस मूर्ति का ध्यान करोगे उसकी छवि तुम्हारे हृदय में आएगी कि नहीं? मानो सरोवर हमेशा शिवजी का ध्यान कर रहा है और शिवजी उसके हृदय में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, यानी प्रकट हो रहे हैं, प्रतिफलित हो रहे हैं। और हे मन रूपी राजहंस, तुम उसी सरोवर में जाओ जहां संबुध्यान सरोवरम, अर्थात हे मन भगवान का ध्यान के अलावा और इधर उधर मत भटको, बस ध्यान को ही तुम सरोवर बनाओ, मन सरोवर बनाओ, और वहीं तुम्हें आनंद आएगा। साधारण हंस होते तो तुम छोटे मोटे ताल तलैया में भी गुजारा होता, तुम तो राजहंस हो। तुम तो राजहंस हो। राजा की शोभा तो राजमहल में ही होता है। जैसे राजा की शोभा राजमहल में है, इसी तरह हंस की शोभा सरोवर में है और राजहंस की शोभा संबुद्ध्यान सरोवर में है। संबुद्ध्यान सरोवरम ब्रज मनोहंसावतंसम संबुद्ध्यान सरोवरम ब्रज। हे मन रूपी राजहंस, तुम संबुद्ध्यान भगवान शिव के ध्यान रूपी सरोवर में जाओ। कैसा है वो सरोवर? संबुद्ध्यान सरोवर, उसकी विशेषता है। संबुद्ध्यान सरोवर की विशेषता है नित्यानंद रसालयम। वो पानी से भरा नहीं है, नित्य आनंद रूपी रस से भरा हुआ है। वो साधारण जल नहीं है, वो जो आनंद ही जल है। आनंद रसालयम, नित्य आनंद रसालयम। महाराज सरोवर सूख गया तो फिर हम कहां चले जाएंगे? बोले वो सूखने वाला नहीं, नित्य। तुम छोटे मोटे तालाब में जाओगे तो पानी नहीं, बारिश नहीं होगी तो एक साल तो फिर वो सूख जाएंगे। पहले हम बंबई में रहते थे तो जून महीने भर भी पानी न पड़े, जुलाई 10 तारीख तक भी बारिश नहीं हुई एक बार, तो बंबई में हाहाकार हो गए। बोले सब तालाब सूख गए है? पानी सप्लाई करने वाले जो तालाब है भातसा बैतरणा, ये हम बंबई को पानी सप्लाई करने वाले ये सब तालाब हैं, सरोवर हैं। बोले पानी घट गया, सूख गया, सब बंबई खाली करो, खाली करो। एक घर में एक व्यक्ति बाइक और कोई नहीं, सब जाओ, भागो भागो भागो। बोलो बंबई के आबादी को 75% खाली किया, नोटिस दे देकर, सूचना दे देकर खाली करो। स्कूलें सब बंद हो गए, कंपनियां बंद हो गए। हाँ एक साल तो ऐसा हो गया था, फैक्ट्रियां सब छुट्टी, जाओ सब गांव चले गए भागे। बारिश हुई और सरोवर का पानी स्तर बढ़ा, तब फिर सब लोग आए। तो सूख सकता है भाई। राजहंस ने कहा होगा जिस सरोवर में जाने की बात तुम कह रहे हो संबुद्ध्यान सरोवरम, वो तो सूखने वाला होगा। बोले नहीं नित्यम, कभी नहीं सूखने वाला है वो। शिव पुराण में मानस सरोवर का चर्चा है, वो सृष्टि के आदि में वह मानस सरोवर से ही सारी सृष्टि शुरू हुई है। मानस सरोवर शक्ति पीठ है, ध्यान देना, इसीलिए कैलाश का प्रतिबिंब पड़ता है ना, वो शक्ति पीठ है। तुम्हारे जो 52 शक्तिपीठ हैं सती के शरीर गिरकर, उनमें से एक शक्तिपीठ है सरोवर, मानस सरोवर। और इसीलिए कि कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब वहीं रहता है, आगे वर्णन आएगा, प्रसंग में हम आपको इसकी व्याख्या करेंगे। नित्यानंद रसालयम, समुद्र का पानी तो खारा है भाई, लेकिन ये संबुद्ध्यान सरोवर का पानी नित्य आनंद रूपी रस से भरा हुआ है। जब शुगर हुआ शरीर में, इस शरीर में मधुमेह का सिम्टम दिखाई पड़ा तो पहली बार टेस्ट किया तो 400 हो गया था, उसे पहले हमको पता नहीं था, और टेस्ट किया तो 400। तो फिर एक माताजी जो है हमको सुबह सुबह करेले का रस लेकर आती थी, समझे आप ये पी लीजिए है। एक दिन पहले तक वही माता जी आमरस पिलाती थी, यही प्रेमपुरी में हो मैं सच बोल रहा हूं, ये गप नहीं कर रहा हूं। एक दिन पहले तक वो माताजी क्या करती थी, आमरस हापुस आम के रस है पैरी आम के रस पिलाती थी। जब पता लगा कि शुगर जो है 400 पहुंच गया है, दूसरे दिन से वह करेले का रस लाने शुरू कर दिया है, देख लो है। अब वो भी तो पीने ही पड़ा कि नहीं बोलो। जब पीने लगे तो मुख बिगड़ गया, आंख बंद करके पी लीजिए स्वामी जी कहती है माता जी। बोले संबोध्यान रसालयम, वो करेले के रस की तरह कड़वा नहीं है, है एकदम रस भरा हुआ है। भगवान शिव के चरणों के जो ध्यान है, वो ध्यान रूपी सरोवर है, वो इतना आनंद का है कि वहां कोई भी दुख नहीं है। रसालयम, भागवत का मंगलाचरण ही वेद व्यास ने यही से शुरू किया है। पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका, कीदृशम भागवतम रसमालयम भागवतम पिबा आलयम लय पर्यंतम भागवत रस पीवा, जब तक न मरो तब तक पीते रहो। ये मर भी जाओगे तो भी पीना नहीं छोड़ना, प्रलय जब तक न हो लय न हो, क्योंकि मरना एक अलग चीज है, लय होना एक अलग चीज है। मरना तो परमात्मा से अलग होकर अलग ही फिर जन्मना है, लय होना हो गए परमात्मा से एक हो गए बस खत्म हो गए। जब तक परमात्मा से एक नहीं हो गए तब तक भागवत रस को पीना नहीं छोड़ना भैया। पिबत भागवतम रसमालयम लय पर्यंतम आलयम पिबत भागवत रसम, कैसा रस है, बोले बस सुखमुखादमृतम है, इतना रसीला है कि सुखदेव जी ने भी उसका पान किया है। और सुखदेव जी ने पान किया और तृप्त हुए और उन्हीं से बचा हुआ यह रस है। सुखमुखादमृत द्रव संयुतम, इसलिए संबोध्यान रसालयम, ये भगवान शिव के जो ध्यान है वह भी कम नहीं है। चाहे भागवत का रसपान करो चाहे संबुद्ध्यान का रसपान करो, दोनों रस क्या है नित्य है, हाँ लय पर्यंत पान करने योग्य है। क्योंकि सुर मुनि स्वांताम्बुजाताश्रयम, सुर मुनि, सुर माने देवता, मुनि माने ऋषि लोग, ब्रह्म चिंतन करने वाले, मनन करने वाले। मुनि शब्द का अर्थ होता है मनन करने वाले। श्रवण करने वाले तो श्रोता होते हैं, मनन करने वाले मुनि होंगे। श्रवण करने वाले श्रोता और मनन करने वाले क्या होंगे, मुनि। मननात मुनि, मनन करो। सुर मुनि स्वांत, उन लोगों की अंत मनि हृदय रूपी अंबुज कमल का आश्रय है। कौन, संबुद्ध्यान सरोवर, क्योंकि कमल कहां खिलते हैं, सरोवर में। संबुद्ध्यान सरोवर में कौन से कमल खिलेंगे, कौन से कमल खिलेंगे भाई, मुनि स्वांत मुनियों के हृदय के कमल संबुद्ध्यान सरोवर में ही खिलेंगे, इसलिए वह सरोवर की शोभा है। जिस सरोवर में संबुद्ध्यान में ऋषि मुनि और देवता लोग भी अपने मन को लगाए रहते हैं, इसलिए सब ऋषियों का सब मुनियों का मन रूपी कमल वही संबुध्यान रूपी सरोवर में खिल रहा है। उसी सरोवर में हे हाँ तुम हे मन राजांश तुम भी वहीं जाओ, तुम भी वहीं जाओ। देखने में भी बड़ा सुंदर है, कमलों से भरा हुआ है संबुध्यान सरोवर। कौन से कमल से? देवताओं के हृदय रूपी कमल भी वहीं खिल रहा है, मुनियों के हृदय रूपी कमल भी वहीं खिल रहे हैं, सब वहीं हैं। तुम भी वहीं जाओ। नित्यानंद रसालयम सुर मुनि स्वांताम्बुजाताश्रयम स्वच्छम। समुद्यान सरोवर में कोई विकार नहीं है, स्वच्छम। स्वच्छ इसलिए कि विजातीयता को कोई संबंध नहीं है। थोड़ा वेदांत की चर्चा करते, विजातीय संबंध हुआ कि उसमें दोष आ गया, प्रकृति और प्राकृत संबंध हुआ कि उसमें विकार आ गया। और क्योंकि समुद्यान इतना स्वच्छ है, सत चित आनंद, यही संबोध्यान सरोवर के जल की विशेषता है, जिसमें केवल सत मात्र है, दूसरा कुछ मिश्रित है ही नहीं, विजातीयता है ही नहीं, जिसमें केवल चिन्ह मात्र है, जड़ का कोई अंश रंच कण भी नहीं है, सच्चिद और जिसमें आनंद है, दुख की छाया भी नहीं है, है? तो इसलिए स्वच्छ है संबुध्यान सरोवर। कैसा है? स्वच्छ है, है? और स्वच्छ इसीलिए वहां सुर और मुनियों के हृदय रूपी कमल खिल रहे हैं। स्वच्छ है इसीलिए वहां नित्य आनंद रस से भरा हुआ है वो जल। स्वच्छम सद्विजसे वितम, वहां तुम अकेले नहीं रहोगे, द्विजसे वितम और भी बहुत से पक्षियां हैं वहां। द्विज शब्द का अर्थ पक्षी है, समझे कि नहीं? द्विज शब्द का अर्थ पक्षी है, दो बार जिसका जन्म हो उसका नाम द्विज। एक बार जन्म होता है अंडे के रूप में और दूसरा जन्म अंडे से फूटकर तब होता है, इसलिए पक्षी का नाम द्विज। यावत अंडज जीवों का नाम द्विज है, समझे कि नहीं? और तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम भी द्विज है, क्योंकि तुम्हारा भी दो बार जन्म होता है, एक बार मां के गर्भ से, दूसरी बार गायत्री मंत्रों की दीक्षा से। मंत्र दीक्षा यदि नहीं है तो तुम शूद्र हो, बस। और यदि मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई है तो तुम द्विज हो। जब तक दीक्षा ग्रहण नहीं होगा तब तक वह द्विज नहीं कहलाएगा, दीक्षा ग्रहण करने के बाद उसका दूसरा जन्म आरंभ होता है, क्योंकि मंत्र से उसका जन्म आरंभ हुआ, इसलिए द्विज। ब्राह्मणों को द्विज कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य उनको द्विज कहते हैं, क्योंकि ये तीनों का उपनयन संस्कार होता है, मंत्र दीक्षा होती है, दीक्षा विधि होती है, और माताएं फिर पूछेंगे हमसे कि महाराज हम लोग द्विज हैं कि नहीं। पुरुषों का तो दीक्षा उपनयन संस्कार जनेऊ संस्कार होता है, इसलिए वह तो द्विज हो गए, उनका तो दो बार जन्म हुआ, हमको तो किसी ने जनेऊ नहीं पहनाया, तो हम तो द्विज नहीं हुए ना महाराज, है? हाँ। अरे भाई द्विज की पत्नी ही द्विज है, हाँ। और हमारे शास्त्र ने अन्याय नहीं किया है बाबा, कोई उपनयन संस्कार करके द्विज बना हुआ हो और वह शादी करता है तब जाकर वह पूर्ण होता है वह द्विज। जब तक शादी नहीं करेगा वह हाप है, और शादी के बाद तब वह पूरा होगा। इसलिए पत्नी को हम लोग अर्धांगिनी कहते हैं। हमारा भारतीय संस्कृति क्या कहता है पत्नी को? अर्धांगिनी। और पत्नी अर्धांगिनी हो गई तो आधा अंग उसका हो गया, तो आधा जनेऊ तो उसके कंधे में भी आ गया कि नहीं? तो ये धागे के जनेऊ को लटका कर क्यों समस्या मुसीबत लेते हो? उन्हीं को भीरने दो, उन्हीं को लटकाने दो, तुमको समस्या नहीं लेना है। वही जनेऊ पहनते रहें, वही निकालते रहें, हैं? और तुमको अपने आप ही द्विजत्व तो प्राप्त हो गया, शादी कर ली है तो उनके साथ अर्धांगिनी हो गई ना तुम, हैं? तो तुम अलग इंडिपेंडेंट क्यों जनेऊ पहनने के लिए कोशिश करते हो? जरूरत क्या है? दूसरी बात है कि महाराज हम जनेऊ नहीं पहनेंगे, चोटी नहीं रखेंगे, तो गायत्री मंत्र का जप करने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो वो तो हमारा जो पति है वो तो चोटी रखा है, जनेऊ पहना है, इसलिए गायत्री मंत्र जप करता है, हैं? अब हमको जनेऊ नहीं है, चोटिया नहीं है, तो हम गायत्री मंत्र नहीं जप कर पाएंगे। अरे बाबा, वो चोटी रखा है, जनेऊ रखा है, गायत्री जपा है, आधा जप तुमको अपने आप मिल गया। ले जी, आधा जप तुमको अपने आप मिल गया। तो हमारे धर्मशास्त्र ने सनातनी धर्मावलंबी महिलाओं पर कोई अन्याय नहीं किया है, जबकि आज एक स्वर से आक्षेप आ रहा है। इन रहस्यों को नहीं समझते हैं तब कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार क्यों नहीं है। हम कहते हैं कि गायत्री मंत्र जपने की आवश्यकता क्यों है? बोले गायत्री मंत्र जपेंगे तो उसका पुण्य प्राप्त होगा, और नहीं जपेंगे तो पुण्य प्राप्त नहीं होगा। तुम नहीं जपोगे, तुम्हारा पति जपेगा, तो आधा तुमको मिल ही गया। देखो, वैदिक सनातन धर्म की व्यवस्था ऐसी है। इस उदात्त सनातन धर्म की व्यवस्था पर ध्यान न देकर, और ये उदारता और किसी भी धर्म में नहीं है। आप ध्यान पढ़ लो, न मुसलमान ने यह अधिकार दिया है तुम्हें अर्धांगिनी का, किसी महिला को अर्धांगिनी का संबोधन किया है मुसलमान ने? बोलो, किसी भी महिला को मुसलमान ने पत्नी को धर्म पत्नी कहा है, संबोधन दिया है? ना क्रिश्चियनों ने किया है, ना बुद्धिस्टों ने किया है। ये तो वैदिक सनातन धर्म की विशेषता है। हाँ, इसलिए हमारे धर्मों में तो महिलाओं को आंदोलन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, और अतिरिक्त अधिकार मांगती हैं तो वह अनावश्यक मुसीबत ही मोल ले रही है, बात न समझकर ही है। इसलिए कहा संबोध्यान द्विज, तुम तो स्वतः द्विज हो गए हो भाई। हाँ, द्विज पत्नी स्वतः द्विज हो गया, द्विज पुत्र स्वतः द्विज नहीं होता है, ध्यान देना। द्विज का पुत्र स्वतः द्विज नहीं होगा जब तक उपनयन संस्कार नहीं होगा, लेकिन द्विज पत्नी स्वतः द्विज हो गई। बस नित्यानंद रसालयम सुम सुरमुनि स्वांताम्बुजाताश्रयम् स्वच्छम सद्विज सेवितम्। ये सब किसके विशेषण है, ध्यान देना। संबुद्ध्यान सरोवर के विशेषण है, जिस सरोवर में अपने मन रूपी राजहंसों को जाने के लिए शंकराचार्य जी प्रेरणा दे रहे हैं। हे मन राजहंस, तुम नित्य संबुद्ध्यान सरोवर में जाओ, नहीं छोड़ना शंभु का ध्यान, शिव जी का ध्यान। कैसा है वो सरोवर? नित्यानंद रसालयम, दुख की छाया भी नहीं पड़ेगी, वहां है ही नहीं। सुरमुनि स्वांताम्बुजाताश्रियम, वाह क्या सुंदर दृश्य है वहां। क्योंकि बड़े मान सरोवर के चारों तरफ देवता नित्य स्नान करने के लिए आते हैं, ऋषि मुनि वहां बैठकर ध्यान और समाधि लगा रहे हैं। उस सरोवर का आश्रय सरोवर ऋषियों का देवताओं का आश्रय ही वो सरोवर है। वे ऋषि मुनि कभी सरोवर को छोड़कर नहीं जाएंगे, इसलिए ऋषि मुनि सम्बुद्ध ध्यान को छोड़कर कहीं नहीं जाते। ऋषियों का मन शिव ध्यान को छोड़कर विषय ध्यान में नहीं जाता है, और हमारा मन ज्यादा से ज्यादा विषय ध्यान करता है और सम्बुद्ध ध्यान में तो जाता ही नहीं है। इसलिए यह दुख का कारण बनता है। और कैसा है वो सम्बुद्ध ध्यान सरोवर? स्वच्छम सद्विज सेवितम कलुषरित, जीवन जन्म जन्मांतर के जो कालुष्य है हृदय में, जीवन में, उस कालुष्यता को हृत हरण करने वाला है। कालुष्य हृत, कालुष्यम माने दोष पाप। जैसे एक बार सरोवर में डुबकी लगाओ मान सरोवर में, तो हमारी सनातन धर्म की मान्यता क्या है? जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। तो सरोवर की विशेषता क्यों हो, ये भौतिक सरोवर की विशेषता कैसी रही? कलुषरित। और इसी तरह सम्बुद्ध ध्यान सरोवर की विशेषता क्या है? कलुषरित, जिसका भगवान शिव के चरण में ध्यान टिक गया उसके सारे पाप खत्म हो गए, कलुषरित। सद्वासना विस्कृतम तब जब कलुष का हरण होगा, दोष हरण होंगे, अभावना असंभावना विपरीत भावना है, जगत वासना देह वासना, ये सारी वासनाएं हैं हृदय में, जीवन में, जो जीवन का एक कालुष्य है, इन्हीं वासनाओं के चलते जीवन दोष युक्त हुआ है। और इन जैसे कपड़े में लगे हुए दाग को साबुन और पानी के माध्यम से धोया जा सकता है, इसी तरह जीवन में लगे हुए इन कालुष्य को धोने का एकमात्र साधन क्या है? सम्बुद्ध्यान सरोवरम, उसमें लगाओ गोता, बस सारे कालुष्य हृत धोएंगे चले जाएंगे, वो सब स्वच्छ होगा। तब क्या होगा? सद्वासना विस्कृतम। अभी हमारे मन में असद्वासना भरा हुआ है। असद्वासना माने जगत वासना, और जीने की इच्छा, भोगने की इच्छा, पाने की इच्छा, ये क्या है? जगत क्या है? असत है। और जगत की वासना असद वासना है। और परमात्मा अर्थात मोक्ष उन्मुक्त होने की इच्छा, ये सत वासना, क्योंकि जगत में परमात्मा ही एक सत वस्तु है, परमात्मा के अतिरिक्त और सब असत हैं। शुक्ल यजुर्वेद माध्यंदिनी शाखा में एक मंत्र आता है, यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तत्सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। हे परमात्मा, आपकी कृपा से एक बढ़िया साधन मुझे प्राप्त हुआ, उस साधन का नाम है मन। आपने मेरा जीवन दिया, जीवन के साथ साथ में जीवन के लिए एक साधन मन भी दिया है, जिस साधन से मैं संसार को भोग भी सकूं और जिन साधनों से मैं बंधन से मुक्त भी हो सकूं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंदाय विषयाशक्ति मोक्षम नैर्विषयकम मनः। वही मन विषय में आसक्त हुआ तो बंधन का कारण बन जाता है, वही मन निर्विषय में आसक्त हुआ मोक्ष का कारण होगा। निर्विषय माने सद्वासना, जिसकी बात यहां शंकराचार्य कहते हैं। सत माने ब्रह्म, सत माने परमात्मा, सत माने आत्मा, सत माने अपना स्वरूप। उससे अलावा सब असत। तन मे मन शिव संकल्पम अस्तु, ऐसा जो मन है अनादिकाल से आज तक अशिव संकल्प करने के कारण ये बार बार जन्म और मृत्यु में पड़ा हुआ है, 84 लाख योनि में भटक रहा है और जन्म दुखम जरा दुख आदि दुख में ये पड़ा हुआ है। ये सारे कारण मन अशिव संकल्प करने, अशिव माने जगत, शिव माने परमात्मा आत्मा, तो वो मन अब आपकी कृपा से अशिव संकल्प छोड़े और नित्य निरंतर शिव संकल्प करे। शुक्ल यजुर्वेद माध्यंदिनी शाखा रुद्री का ये जो मंत्र है शिव संकल्प सूक्त 6 मंत्र का सूक्त है। लगभग उसी तरफ संकेत करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं संबोध्यान सरोवरम, सद्वासना विस्कृतम। तुम उस संबुद्ध्यान रूपी सरोवर में एक बार गोता लगाओगे तो तुम्हारे हृदय के जगत विषयक वासना कालुष्य खत्म हो जाएंगे और वहां सद्वासना विस्कृतम मोक्ष रूपी वासना, मोक्ष की इच्छा का आविष्कार होगा। ये जल की ये जादू है, चमत्कार है। समुद्यान सरोवर के ये चमत्कार विशेषता है कि उसमें गोता लगाते ही असदवासना कालुष्य सब खत्म हो जाएंगे और सदवासना मोक्ष की तीव्र इच्छा वह प्रकट होने लग जाएगा। संबोध्यान सरोवरम ब्रज मनोहंसा बतंस्तम स्थिरम किम क्षुद्रालय शुद्राश्रय पल्वल भ्रमण। ऐसा स्थिरम, ऐसा संबोध्यान, इतना विशाल, ऐसे विशेषणों से युक्त इतना बढ़िया मान सरोवर संबोध्यान सरोवर होते हुए वहां न जाकर तुम क्षुद्रालय पल्वल, ये संसार के छोटे मोटे ताल तलैया में क्यों भटकते हो? क्षुद्रालय, क्योंकि संसार का विषय तो क्षुद्र है ना। समुद्यान सरोवर के सामने है चुल्लो भर पानी के गड्ढे, वो तो क्षुद्र ही है। और हम करते क्या है कि वही चुल्लो भर पानी वाला जो गड्ढा है उसी गड्ढे को खोजते घूमते हैं, कहीं थोड़ा सा विषय मिल गया तो वाह क्या क्या मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, देखते देखते विषय गायब हो गया, बैठ के रोने लग गए। थोड़ा सा मान मिल गया, मक्क हो गए, एकदम मस्त हो गए, थोड़ा सा धन मिल गया, मस्त हो गए। ये सब क्या है? संसार के मान पद प्रतिष्ठा धन दौलत ये सब क्या है? क्षुद्रालय, छोटे मोटे ताल तलैये है, ये तो कभी भी सूख जाएंगे भैया, कभी भी सूख जाएंगे। आज तुमको थोड़े से बारिश हुई और देख लिया पानी, उसी के सरोवर के सामने, उस गड्ढे के सामने घर बनाकर मत बैठना भैया। क्या सुंदर बात कह रहे हैं। मानसून के चौमासा में बारिश हो गई, एक गड्ढे में पानी भर गया, बोले आहा क्या सुंदर पानी का सरोवर है, यहीं घर किनारा में घर बना के बैठ जाए, पानी की कमी नहीं रहेगी। तो वो पानी तो बारिश के चलते था, बारिश खत्म होते ही वो गड्ढे के पानी सूखने में कितना देर लगेगा भैया, बाद में फिर रोने लगोगे कि नहीं? इसलिए छोटे मोटे तालाब के सामने घर बनाकर बैठना नहीं, बैठना ही हो तो संबुद्ध्यान सरोवर के किनारे अपना नित्य निवास स्थान बना लो। है ये देख लो, किं क्षुद्राश्रय पल्वला भ्रमण सन् जाताश्रमं प्रप्स्यति। इधर उधर भटक के थकान श्रमम भ्रमण संजात श्रमम, तुम दुखी क्यों होते हो? बोले क्योंकि तुमको भटकना पड़ रहा है संसार के छोटे मोटे तल तलैया में, दो चार पैसा लाख दो साल करोड़ दो करोड़ के चक्कर में भटकना पड़ रहा है, इसीलिए जो तुमको ये परिश्रम हो रहा है, है? सम्बुद्ध्यान सरोवर में जाओ तो निधिनां त्वाम निधिपति गुं हवामये। कुबेर को भी सारा तीनों लोक का साम्राज्य देने वाला तो सम्बुद्ध्यान सरोवर है। बोलो कुबेर को ये तीनों लोग साम्राज्य कहां से प्राप्त हो? वही शिवजी ने तो दिया है, है? यद्रिद्धिम सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति अधश्चक्रे बाण परिजन विधेयस। बाण बाणासुर ने यद्रिद्धिम सुत्राम्णो इंद्र का स्वर्ग के साम्राज्य को भी तुच्छ करने की साम्राज्य प्राप्त कर ली। किसने? बाणासुर ने। कहां से प्राप्त कर लिया? सम्बुद्ध्यान सरोवर, भगवान शिव की आराधना से ही वो सब प्राप्त कर लिया है उसने, बाणासुर ने। इसलिए ये मन राजहंस तुम इधर उधर मत भटको। नित्यानंद रसालयम सुरमुनि स्वांताम्बुजाताश्रयम् स्वच्छं सद्विजसेवितं कलुसरित सद्वासना विस्कृतं सम्बुद्ध्यान सरोवरं ब्रजमनो हंसावतंस्तं स्थिरं किं क्षुद्राश्रय पल्वल प्रमणसं जाताश्रमं प्राप्स्यसि। आनन्दामृतपूरिता हरपदां भोजालवालोद्यता थैर्योपग्नमुपेत्य भक्तिलतिका शाखोपशाखान्विता उच्चैर्मानसकायमान पटलिम् आक्रम्य निष्कल्मषा नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे सत्कर्म संवर्धिता। अब शंकराचार्य जी किसान खेडूत बोलते हो ना आप लोग, अपने आप को किसान की भूमिका में हैं, अपने आप को किसान की भूमिका में पहुंच गए वो, और कहने लगे कि तुम बढ़िया खेती करो भैया। है कौन सी खेती करना है? यहां जो कहा है वही कहो, भक्ति लतिका, भक्त लतिका है। देखो तुमको दूधी खानी हो तो दूधी पेड़ में लगता है कि लता में? हाँ। करेला खानी हो तो, परवल खाना हो तो, टिंडोला खाना हो तो बोलो कहां किसमें लगते हैं ये फल? तमाम है भक्त लतिका, लता में लगते हैं। तो बोले लता की खेती करेंगे हम तो भाई। कौन सी लता की? बोले भक्ति लता की। इसकी व्याख्या कल करेंगे, समय तो हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विवागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।